গৌরাঙ্গ বলিতে হবে कृष्ण तत्व क्या है, गौर तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, देव तत्व क्या है, भजन किसको कहते हैं, ये सब तत्वों की शिक्षा जी को शांत करता है। अकेले में तीन थे, श्यामानंद जी श्रीनिवास जी, एक ही उम्र के करीब करीब श्रीनिवास जी कुछ बड़े 18 वर्ष के होंगे, नरोत्तम ठाकुर जी 16 वर्ष के, श्यामानंद होंगे 14-15 वर्ष। श्यामानंद जी उड़ीसा के और महाप्रभु जी के परिकर खास गौरीदास पंडित के भाई हृदय चैतन्य के हृदयानंद जी के, जब इनकी बलवती इच्छा थी तो मैं कुछ और सीखूं, तो उन्होंने गुरु जी से, गुरु जी ने कहा कि ये सब चीजें तुम वृंदावन में जाओ, राजा के वो भी घर बार छोड़ सकते थे, और इधर श्रीनिवास आचार्य नन्नरूप गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ थे, कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी का क्या ग्रंथ है, गोविंद लीला में और है सनातन गोस्वामी का बृहद भगवत गोपाल चंपू और सब ग्रंथ पढ़ाए, और हर नाम व्याकरण पढ़ाया, और विशेष करके षट संसार तत्व संसार पर भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ पढ़ ही रहे। जी गोस्वामी ने कहा कि गुरु करने की जरूरत है, इसमें दुखी कृष्णदास का श्यामानंद भी नाम है, दुखी कृष्णदास उनका नाम था, गुरु ने रखा, और घर वाले देखते थे दुखिया, और गुरु ने रख दिया दुखी कृष्ण, कृष्ण जब नहीं मिल रहे हैं वही व्यक्ति दुखी है। तो यहाँ पर ये तो दीक्षित थे ही, ये नरोत्तम ठाकुर जी जी गोस्वामी को गुरु का अर्ण करना है। मैं तुम्हारा तो गुरु है ही नहीं, हमसे भी जो उन्नत है उनसे इसलिए उनको लोकनाथ नरोत्तम ठाकुर जी को लोग और श्रीनिवास आचार्य को कैसा देखिए ये स्मृति प्रश्न और उनके शिष्य करवाए आप फिर पढ़ रहे हैं कहाँ। तो उन लोगों ने देखा जैसे हमारा शिष्य है किंतु मैं उनको इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना जी गोस्वामी विद्वान है और जी गोस्वामी देख रहे हैं कि भगवत परमार्थ तत्व में ही हमसे बहुत बड़े नीचे हैं, दीनहीन कंगाल जैसे होते हैं। तो ठीक है जैसा हमको आदेश है, उम्र उनकी छोटी थी, लक्ष्मी गुरुवर को काम दिया पालन करते कोई ईर्ष्या नहीं कोई द्वेष जो भगवत भक्ति में बाधक बनता है उच्च वो गुरु गुरु ही नहीं। गुरु को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा शिष्य बहुत उच्च है और जाना है कहाँ भगवान के यहाँ और सभी का ध्येय यदि यही है तो फिर उसके विरोध कहाँ रह गया। कोई तो जो समझते हैं ये अबोध है। अब भक्ति संदर्भ में आज वही उनको दिखला रहा था रामचंद्र जी नरोत्तम ठाकुर जी टट्टी साफ किया तो लोकनाथ अंधेरे में रात ये किस लिए करता है तो आप हमको दिखा नहीं देते, राजा का लड़का होकर क्यों ऐसा करता है। अच्छा देख करके इसके बाद में तीनों पंडित करके जी गोस्वामी ने उनको सारी पुस्तकें दे दी गाड़ी में भर कर और बंगाल में ले जाओ उसका। नरोत्तम ठाकुर जी कुछ दिन तक अपने गुरु जी के यहाँ थे लोकनाथ जी के, उन्हें कहा जैसे जब रहेगा तो हमारे पास में रहो। ठीक सर। एक दिन परीक्षा करवाई, एक कृषक आया दोपहर में, लगे हमें जरा पानी पिलाना। गुरु जी तो भजन कर रहे थे तो उठे नहीं, सुन करके भी नहीं। और ये भी 15-16 वर्ष के लड़के, उनको आज छोटे बाबा प्यास लगी है जरा बाल्टी और डोल दे दो मैं खींच करके पानी पी लूंगा। तो उन्होंने हरि नाम को छोड़ करके और डोल बाल्टी वो पिया, पी करके वो चला गया। जब चला गया तो उन्होंने गुरु जी ने बाल्टी बुलाए, हरि नाम जानता है क्या है ये ठीक है, हरिनाम स्वयं भगवान कृष्ण जो हरिनाम करता है उसको समझना कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। तो कृष्ण की सेवा तू कर रहा है और उस समय पानी पिलाना ये भी कर्तव्य है, दोनों में कौन कर्तव्य बड़ा है समझ में, कौन सा कर्तव्य है। एक पत्नी है अपने पति की सेवा कर रही है और एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, अतिथि को कुछ देना भी उचित है और पति की सेवा भी कर रही है। तो वो जरा अभिमानी थे भिखारी, वो साधारण नहीं थे योगी थे। तो उसने कहा जरा अभी पति की सेवा कर रही हूं अभी थोड़ा सा ठहर जाइए। तो जरा क्रोधित होकर के उसके ऊपर में देखा योगी ने, अभी हमारे ऊपर में क्या ये टेढ़ी नजर करके देख रहा है, मैं बगला नहीं है जो मैं जल जाऊंगा। एक बगले को बीट कर दिया तो उसने जला दिया, तो समझा जी इसको भी जला देंगे, यदि और कुछ जानना है तो वहां पर जाओ। तो इस तरह से पति की सेवा भी है और भिखारी को अन्न भी देना है तो जो प्रधान कर्तव्य है उसको कर करके अपना गौण काम करें। तो जो हरिनाम कर रहा है हरिनाम खास एकदम कृष्ण की सेवा है और उसको छोड़ करके किसी को पानी पिलाना ये कौन है। जरूर है तो वो भी, किंतु इससे जरूरी वो है, इस चीज को आदमी नहीं सकता। कहे तुमने भगवान की सेवा छोड़ करके अब जीव के लिए गया, जश्न क्या है जिससे से जगत तृप्त हो जाता है, तुम उसकी छोड़ करके तुम उसको अलग से सेवा करके संतुष्ट कर सकेगा? प्रभु नहीं जानते हैं, वो व्यवस्था नहीं कर सकते। तुम हरि नाम की महिमा नहीं समझी, नाम की महिमा जाओ अपने देश, तुम हमारे पास में। फिर मैं बहुत चेष्टा की रहने के लिए किन्तु नहीं रखे चले गए। फिर हमें आतुर होकर के वो पदावली लिखते हैं, कृष्ण भी या चैतन्य महाप्रभु सपरिकर एकदम प्रकट हो जाते हैं जब वो कृष्ण इतना सुंदर गाते हैं, सभा के लोग मुग्ध हो जाते हैं, सभी रोने लगते हैं, कृष्ण भी आ जाते हैं सुनने के लिए और महाप्रभु परिकर के साथ में आ जाते हैं, वो यहाँ गा रहे हैं। फिर हमें आतुर होकर हम लोग गाते हैं ना, देखते हैं कि ये श्रोता लोग को आज हमने खूब मनोरंजन कर दिया, वो नहीं, वो क्या देख रहे हैं? अत्यंत आरती से भरे हुए महाप्रभु जी को बुला रहे हैं, गौरांग बोलते हरे हरि हरि बोलते नयन वर। आप तो समझ रहे हैं, ऐसा कब हमारा दिन होगा मैं गौरांग जी का नाम लूंगा और आंखों से हरी हरी जब बोलूंगा तो आंखों से आंसू, शरीर में रोमांच और पुलक हो जाए। हम लोग को होता है, उनको होता था, सिर्फ हम लोग ऐसा कब हुआ जब पुलक हुआ? ये भजन की शिक्षा किस तरह से ये होगा? हरिनाम करते करने वाला तो कनिष्ठ अधिकारी भी करता है, मध्यम अधिकारी भी करता है, उत्तम अधिकारी भी करता है, किंतु सबका हरिनाम एक नहीं है। महाप्रभु जब हरिनाम करते थे एकदम लोटपोट हो जाते, आंखों में आंसू की धारा बह जाती और देख रहे हैं कि एक श्याम सुंदर बालक है, पीताम्बर पहने, मुरली अपने होठों पर रखे और सुंदर मुरली बजा रहा है। जब पकड़ने चले ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, वो पीछे सरकता गया, जब जरा आगे बढ़े तो इधर से इधर करता हुआ पेड़ों की आंटों में झुरमुट में कुंज में कंच की, बस ये लोट लोट महाप्रभु। तो उनका नाम और हमारा नाम एक है, हम हरि नाम करते हुए विषयों की चिंतन करते हैं, चित्त चंचल। मध्यमाधिकारी का नाम कनिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं, किंतु गुरु का कर्तव्य है कि कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम मिले। कैसे हमारे भजन की उन्नति हो, संसार की समृद्धि के लिए नहीं, ये तो होता रहेगा यदि शिष्य को हृदय में मंदिर भी बना दिया। जब हम लोग गौरांग बोलते हरे पुलक, गोविंद बोलते हरे पुलक, तब तो ये भजन की निष्ठा बढ़ी, तब तो हम अपने पथ में कुछ अग्रसर हो गए। हमने 20 वर्ष नौकरी किया और एक पैसा नहीं मिला, नौकरी करना अच्छा है एकाकाजी, इसलिए हम देखते हैं कि फल क्या है। सब फिर कर तक रोमांच और पुलक नहीं होगा, आंखों में आंसू की छड़ी नहीं होगा जब तक विषय की लालसा है। जब सब विषयों की लालसा दूर हो जाए, हाय कब भगवान मिलेंगे, उनका प्रेम हमारे हृदय में कब होगा, उसके लिए विरह होगा, तब ये उसके पहले नहीं। ये विषय कैसे जाएंगे, हमारी इच्छा से तो जाएंगे नहीं, मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि बल देने वाले बलदेव प्रभु की यदि कृपा हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो, ये कहानी सहज सरल हो। अन्यथा नहीं होगा। भक्ति जितने हृदय में आती जाएगी, विषय उतने हटती है। विषय को हटा लेंगे तब भक्ति लाएंगे, यह गलत धारा है। आवाज समझ में, इस चीज को समझना होगा। इस घर में मान लिया कि ये बंद है, चारों तरफ हवा चढ़ गई है। हम लोग के स्कूल में जब जाते थे कभी कभी, तो स्कूल में सबसे पहले यदि पहुंच जाते तो दरवाजा खोलते तो उसमें जाने पर दुर्गंध आती। तो ये कैसे होगा, नई हवा वहां भरेगी और ये धीरे धीरे हटती जाएगी। इसको हटा लेंगे और उसको लाएंगे, ये ऐसा कभी अदा होने। इसी तरह से ये विषय है, ये हल्की चीज है और भक्ति जो है गंभीर चीज है, भारी चीज है। तो भारी चीज आएगी तो ये हल्की चीज हटेगी, अन्यथा नहीं हट सकती। हजार आप चेष्टा करें और कोई हल्की चीज ले आकर के इसको हटाना चाहेंगे, उसको ढकेल देंगे, नहीं आने देंगे। इसलिए भक्ति यदि गंभीर है, इसलिए जितना ये नित्यानंद कृपा से ये आती जाएगी और ये विषयों को हटा देंगे। कोई ऐसा चाहे कि हम विषय वासना को हटा लें और तब भक्ति आएगी, ये मूर्ख लोग, करीब 99% मूर्ख लोग इस चीज को समझ। वो कहते हैं कि पहले हम अधिकारी बनेंगे। अरे अधिकारी बिल्लो मंगल अधिकारी कैसे हो गया, बेचा के साथ में रहते हुए दुराचारी व्यक्ति अजामिल कैसे हो गया। हमारी वो बेचा जो हरिदास ठाकुर से सुनती थी, नाम सुनती गई, उसकी वासनाएं हटती गई, भक्ति पूरी हो गई, वासना संपूर्ण। भागवत में भी ऐसा कहा, एकड़ी तम ब्रज बदुजी दंच विष्णु श्रद्धान में तो सुन याद वर्णये दज भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य काम हिज रोग माशु अपिस्मत दसी। पहले भक्ति आएगी, भक्तों के साथ में रहकर के भगवान की कथाओं सुन रहे, पहले भक्ति आएगी और ये संसार के प्रति जो आसक्ति है, ममता है, हृदय रोग माने काम, संसार के प्रति सारा संसार इसी में मुक्त हो रहा है। ऐसे कोई प्रकृति नहीं है, ऐसी कोई जोनी नहीं है जो ये काम नहीं ना चाह रहा था। चाहे कुत्ते की जोनी हो, सर्प की जोनी हो, किसी भी जोनी हो, मनुष्य की जोनी हो, देवता है, गंधर्व है, ये काम इच्छा है। कब जाएगा, जब विशुद्ध भगवत विषय काम प्रेम आएगा, अन्यथा ये नहीं। हो नित्यानंद प्रभु जी आपका क्या करें जब मेरी ऐसी दशा। हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा होनी चाहिए, आपके चरणों में रति होगी महाप्रभु। अन्यथा दर्शन होगा। विषय उसमें वृंदावन दिखेगा, अभी वृंदावन जाने से भी वृंदावन नहीं दिखेगा, जो वृंदावन देखते हैं वहां पर जाकर के बंदर देखते हैं कि हमारा चश्मा ले गया, देखते हैं कि हमारा ये फल कुछ ले जा रहे थे ये बंदरों ने नोच लिया। व्यक्ति पंडे जैसे तैसे भाई हुरू आपके पॉकेट जो भारी है उसको निकाल लेंगे, कुछ उसमें मन खिन्न हो जाएगा, ये बेकार कर जाए बिना जा। बहुत सुंदर ये यदि सुंदर चीज है तो वही कहें नहीं रह जाते, यदि खूब लुभावनी ही चीजें हैं वहां के कुंज और ये सब तरह तो एक मिनट जा करके देख करके फिर भूल जाएगा, दूसरी चीज देखे वो वृंदावन है। वृंदावन वह जैसे एक बार देख लिया तब अब वो वृंदावन नहीं, रूप रघुनाथ की कृपा नहीं, उसे प्रार्थना करते हैं। ये भजन है, जब भजन में बैठे हैं तो हरिनाम करते हैं, ये सब प्रार्थना हो तो जो भजन करते हैं वो तो सीख लाएंगे, आज जो नहीं संसारिक चीजों को करने में अपने जीवन को बस यही भक्ति है, बस इसे अतिरिक्त और कोई भक्ति ही नहीं, भक्ति दिखाई नहीं समझाई
नहीं।
और मिनती एक होता है, मिनती मैंने
लगड़ा करके
इसके बिना मैं जी तब तो आकृति है। रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण में हमारी यह आकृति है, जो मैं कब जुगल की प्रति समझूंगा, कहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है या कहने का अधिकार नहीं, कहने का अधिकार नहीं, कहने का अधिकार नहीं। किसी को लोभ हो गया कि हम राजकुमारी से शादी करेंगे, एक दरिद्र आदमी रिक्शा चलाने वाला उसके रूप पर मुक्त हो गया तो उसके मन पर भी मन से भी ये इच्छा नहीं करेगा, वो तो कर सकता है। उसी तरह से हमारे मन में कोई इस तरह से सुन करके यदि अभिलाषा हुई ये जुगल के प्रति हम कर सकते, या इच्छा आना भी एक अपराध है ऐसा मूर्ख लोग कहेंगे, कोई अच्छी चीज है उसके लिए। एक लड़का भी क्लास 9 में 8 में पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है और उसने सोचा जैसे हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, तो ये अभिलाषा उसके घर में कोई डॉक्टर है उसकी अभिलाषा हुई जैसे वैसे ही हम इसका पढ़ा देखते हैं बहुत धनी आदमी हो गया इसी से हो गया कमा लिया हम भी ऐसे कमाएंगे, इस पर कोई अंकुश नहीं है अभिलाषा के ऊपर, चाहे पूरी ना हो या हो वो दूसरी बात है। ऐसे भगवत भक्ति के संबंध में हम लोग ऐसी लालसा नहीं कर सकेंगे, यही तो लालसामयी भक्ति है नहीं है, किंतु हम उसके लिए अभी से जो भजन करते हैं यही एक उद्देश्य रख करके, जिसका उद्देश्य ठीक नहीं है किसी विषय का तो किसी विषय में सफल नहीं है। इसलिए एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ कुछ होना चाहिए, जिसका कुछ है ही नहीं है एम ऑब्जेक्ट भजन का, भजन किसको कहते हैं जानते नहीं, तब फिर क्या भजन करते। इसलिए हम लोग अपने पूर्व आचार्यों की उनकी चीजों को पढ़ करके उसे लालसा करना सीखेंगे, उसे प्रार्थना करना सीखेंगे। वैष्णव की कैसी सेवा होती है ये सीखेंगे, यदि उद्देश्य जिसके पास में जाने से हमको वो चीज मिलेगी उसके पास भी जाएंगे। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और चले गए डॉक्टरी पढ़ने के लिए, हाँ मेडिकल कॉलेज में, तो ये कैसे होगा? आप चाहते हैं मेडिकल कुछ होना और आप चले गए वहाँ जहाँ करके लॉ कॉलेज है वहाँ चले गए, कैसे होगा? यहाँ पर आर्ट कुछ पढ़ना चाहते हैं और साइंस कॉलेज में चले गए, ये कैसे होगा? तो हमको जो चीज जानना है उस क्लास में जाएंगे जहाँ पर वो होता है, उसमें कुछ सहायता मिलेगी। इसलिए हम वैसे ही वैष्णव का संग करेंगे जैसे हमारी लालसा है, हमारी भजन का सब तो भजन, और नहीं तो ये सब वैष्णव का पढ़ने में पुस्तक में हमारा अधिकारी नहीं। यदि पहले ही से ही ठान लिया तो इसका मतलब हमने ठान लिया ये क्लास वन के अतिरिक्त हम दो में पैर नहीं रखे, चाहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम नहीं रखे तो ये बेवकूफी है। एक आदमी ने कुआं खोदवाया तो उसमें पानी खूब निर्मल था, जब वो मर गया तो प्राय 50-60 वर्ष के बाद में उस कुएं का पानी गंदा हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। लोगों ने कहा जी इसका भाई तुम पानी मत पियो, तो उसका बेटा कह रहा जी मैं तो मर जाऊंगा मैं तो उसी कुएं का पानी जिसको हमारे बाप ने बनाया, अरे पहले शुद्ध कर लो, नहीं शुद्ध करने की जरूरत है, उसमें कुछ करने की जरूरत है, उसी का तो मरेगा। इन सब विचार करके भजन राज्य में अग्रसर राधा कृष्ण
प्रणाम
Thank you.
नित्य सिद्ध कर दी। उन्होंने कीर्तन लिखा तो उस कीर्तन को वो सब पहले ये सब कीर्तन हुआ करते थे। तो एक गांव में गए लोग, वहां पर कीर्तन कर रहे थे, तो गांव के लोग लठिया लेकर के मारने गए। किस लिए? वो कीर्तन में है, लोग जानता है कि मिथे ये संसार
है,
आरंभ की
दुर्लभ
मानव
जन्म
लवी आ संसार कृष्ण ना भजिन दुख कर सका। आ रहा है समझ में? है देखो तो बात करते दो तो संसार का चित्र इसमें नहीं है, बांग्ला में यहाँ के लोग सुनेंगे तो फड़के। तो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दुर्लभ मानव जन्म, ये तो ठीक है ना, भगवान की कृपा से इसे हमने प्राप्त कर लिया। किंतु कृष्णा भजिनु दुख कही बका, मैं इस दुख को किसे कहूं जो मैंने कृष्ण का भजन किया। कोटि कोटि जन्म से घूम रहा हूं, इस जन्म मरण के चक्कर में कभी सुंदर जन्म हुआ, कभी कुरूप जन्म हुआ, कभी मछली कुत्ते सुअर गधे घोड़े ये सब जन्म, कभी टट्टी के कीड़े हुए हूँ, भगवान का भजन है। इस बार बहुत सुंदर जन्म मिला है मनुष्य का, फिर भी भजन नहीं होता, दिन रात इधर उधर के काम में लगे रहते हैं। हमने किसे चुप कहूँ? संसार संसार करे मिछे गलो का, संसार ये संसार में ये कर्तव्य है, ये करना है, वो करना है। 80 वर्ष तक कम ने खूब काम किया, खूब संग्रह, और 80 वर्ष के बाद में मृत्यु हो गई, सब यहीं पर छोड़ करके चले गए, किस काम में आया? सोचो, ये शरीर को खूब लालन पालन किया, खूब सुंदर बनाया, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में खड़ी हुई है, इसके बाद में दांत टूट जाएंगे, गाल पिचक जाएंगे, केश श्वेत हो जाएंगे, चल नहीं सकेंगे, उसमें क्या होगा? ये शरीर को भी छोड़ करके चले। तो संसार संसार करते 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 मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता, बस इस तरह करते करते सारा वर्ष 100 वर्ष की आयु चली गई, लाभ ना हो लो किचू घटी लो जंजाल, न तो वो जंजाल कमा पड़ता गया। हम सोचे जैसे बच्चे अभी पढ़ लेंगे ठीक हो जाएगा, पढ़ने के बाद में समस्या ही नौकरी की, वाणिज्य व्यवसाय की, वाणिज्य व्यवसाय की स्थिति गड़बड़ है, दूसरी कंपनियां भारत में आ गई हैं धनी धनी, अब यहाँ के लोग उससे पैरेलल में समानांतर में नहीं आ रहे, हताश हो रहे हैं, नौकरी मिलती नहीं, हार्ड कंपटीशन, एक नौकरी 500 आदमी उसके, और आप योग्य हैं सब प्रकार से, आप पैसा 1 लाख नहीं दे सकते नौकरी, नौकरी उसको मिली जो सबसे गंदा लड़का किसी प्रधानमंत्री का किसी का थोड़ा सा हो गया वो, इसके बाद में फिर नौकरी भी मिल गई आपको, और विवाह की समस्या है, विवाह हो गया लड़का नहीं हो रहा, वो एक समस्या है, आपने लड़का भी है सब कुछ है, लड़का हो गया बेईमान बदमाश, ये एक समस्या आ गई, विवाह करने के बाद में जिसके भरोसे आप रहना चाहते थे वो भी अपनी स्त्री को लेकर के चला गया, आपका भी रुचि बन गया, ये बड़ी भारी समस्या, इसके बाद में रोगों ने घेरा, इसके बाद में ना तो प्रधानमंत्री हो गए तो किसी ने बंदूक चला दी, और बस ये भी समस्या, ये सारे जीवन समस्या समस्या करते 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 वृद्धावस्था में और समस्या बढ़ जाती है न कमती है, कम नहीं होती। किंतु बहुत से बुद्धिमान है ना कि इन कर्तव्यों को संसारी को हटा करके हमने भगवान का, ये बुद्धिमान है, अब इनका कार्यकाल कुछ था, कुछ पैसे और कमा लेते,
उन्होंने कहा नहीं अब मैं भगवान का भजन करूँ जब मुझे जीतना है। कुछ कमी तो है नहीं, लेकर के जाना नहीं है, अब इसी से हम अपना भरण पोषण कर लेंगे जो मिल जाता है और भगवान का भजन। ये चलाकी बुद्धिमानी। तो वो जो जंजाल जिसके लिए हम कर रहे हैं कि ये विपद घट दूर हो जाए, ये अभाव कम, अभाव माने ये चीज की जो कमी है, तुमको कोई चीज की कमी है कि नहीं, सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई, कुछ कमी है अभी तो तुमने अभी संसार में नहीं प्रवेश किया, अभी तो बहुत कमी है, सब चीज की कमी, कमी जगत में किसी की कमी नहीं पूरी हो सकती, हो नहीं सकती, ये संसार अभाव से बना है, नहीं होगा, कुछ होगा उसमें सब कुछ ठीक कर दिया, एक चीज की कमी कर दी, धनी कुल में जन्म हुए सब कुछ हो गया, नाक में थोड़ा सा यहाँ पर एक कुछ हो गया बस, बड़ी प्लास्टिक सर्जरी को रुक गया, बड़ी भारी समस्या, इस तरह से कोई ना कोई समस्या जरूर लगी रहेगी, ये समस्या का ये स्थान है, और हम लोग जितना बढ़ाते हैं उतना ही समस्या, उम्र बढ़ती जाएगी, 100 वर्ष की उम्र में समस्या सारी आ गई जो बच्चे की रहती है, बच्चा तो पलंग पर बैठा सोया हुआ ऐसा ऐसे चला लेगा, कसरत कर लेगा, वो ठप ठीक बुरा क्या करेगा, वो तो खा ही नहीं सकता, किसी का संसार ये छायाबादी पर, किसका ये संसार क्या छायाबाजी, छायाबाजी मैंने वो जो आकाशबाजी होती है क्या, आकाश में फूल खिलने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद झर करते निकला, निकल करके आकाश में कुछ दिखलाया रंग और फिर समझ रही है, ये संसार क्या है, आतिशबाजी है, उसमें कुछ है ऐसे देखती कुछ भी नहीं, ऐसे संसार जो है छायाबाजी, छायाबाजी माने और भी एक ले लो, छाया की बाजी है क्या, अपनी छाया पकड़ने जाओ पकड़ में नहीं आएगी, और यदि पकड़ने में जाकर के उल्टे दिशा में सामने चलो तो छाया तुम्हारी पीछा करेगी, कुछ मिलेगा नहीं उसमें, ऐसे ये संसार दिखता है, ये कर लेंगे तो ये जरूर हो जाएगा, हमने सोचा जैसे एक हम कार लेने को तो कार में जो पेट्रोल डालने और ये सब की और रोज रोज 1,000-2,000 खर्चा होने लगा, जैसे ये तो बड़ी भारी समस्या, और बेचने में भी समस्या, ऐसा जगत में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें समस्या ही समस्या नहीं है, छायाबाजी है, देखने में मालूम होता है ये अब मंजिल हमारी पूरी हो गई, इतने में दूसरी लहर आएगी, अच्छा ये यदि लहर चली जाएगी तो ठीक होता है, इतने में तीसरी लहर, पहले से तैयार, यहाँ पे ममता करी पूछा जाए, छायाबाजी में ममता करे कोई तो क्या होगा, समय नष्ट होगा बर्बाद, जो असल चीज है भगवान का भजन, अपने को जान करके उपलब्धि करके मैं कौन हूँ क्या मुझे क्या कर, ये तो करते नहीं, बस छायाबाजी जैसे करते हैं, ममता करते हैं और ममता वाली चीज नष्ट हो जाती है, फिर हाय हाय हाय, एक लड़के पर ममता की, लड़का बीमार हो गया, हाय हाय चला गया, हाय हाय, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए हम ममता करते हैं और वो हाय हाय ना कराए, यह सुख नहीं दीजिए, ये देह पतन होइले के रबे आमार, ये यदि शरीर हमारा खत्म हो जाएगा हमारे घर वाले उसको कितने दिन रखेंगे, मेरे शरीर को मेरी मैया मेरे बाप मेरी पत्नी मेरा बेटा कितना दिन रखेगा जी, बतलाओ तो, उसी समय से उसको बाहर घंटे रो रहे हैं किंतु बाहर करना है, केहू सुख नहीं दीदे, जब मर जाऊंगा या मरने लगूंगा उसमें कोई सुख नहीं दे सकता, कोई भी सुख नहीं दे, हाय हाय करेंगे तोबा तोबा करेंगे, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, पैसा भी खर्च कर सकते हैं किंतु वो दुख जो है वो बांटेंगे नहीं, कोई बांटेगा, पत्नी तो जरूर आपकी बात नहीं है, हाँ भगवत भक्त बांटे, पत्नी यदि भगवत भक्त हो बांटे, गुरु यदि अपने हैं तो वो बांटे, कैसे भगवान के नाम के ऊपर रह करके भगवान के नाम के प्रभाव से वो सब कर्म फल सब दूर हो जाते, सुखदेव गोस्वामी नंगे रहते थे, उनको कपड़ा मिलता था कि नहीं, कपड़ा मिलता था पहन लेते कि नहीं, नहीं पहन, कोई घर बना देता महल उनके लिए तो महल में रहते, उनकी कोई सुंदरी लड़की से शादी कर देता तो करते है? भगवान के भजन में इस प्रकार से तन्मय है, उनको इतना सुख मिल रहा है, ये सब सुख उनके सामने में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। घर तो फिर मत आमी करी परिश्रम, गधे की भांति दिन रात संसार के लिए परिश्रम कर, किंतु किसी लिए कर रहा हूं? बेटे के लिए। बेटा तो तुमको निकाल बाहर करेगा, बहू आएगी झाड़ू देगी पीठ पर, बाहर कर देगी। विशेष करके आजकल की शिक्षिता इसलिए कार लागी करियो तो ना घुसी, किसलिए मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सोचता नहीं है। दिन जाए मीठा काजे, दिन बेकार के काम होते, शराब पीने के लिए, इधर करने के लिए, उधर काम करने के लिए, दूसरों के लिए। राय जी क्या कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री होकर के, दूसरों के लिए सब कर रहे, हुआ क्या? जिन लोगों ने किया उन लोगों ने निकाल बाहर किया, अभी देखिए उनको कितना सम्मान दे रहे हैं ना, सभी उनके विरोधी बन गए। अभी केसरी जी चल रहे हैं, अब थोड़ी देर के बाद में केसरी की टांग पकड़ करके खींच देंगे, जब वो गिर जाएंगे तो फिर कोई नहीं। दिन जाए निशा काजे, निद्रा निशा निद्रा, बस दिन में तो बेकार का काम में, फालतू काम में गया जो काम में आएगा नहीं, और रात कैसी गई? सो गए बस। ऐसे नहीं आते एक गोली खा करके सो जिससे कि नींद आए, एक गोली से नहीं आता दो गोली खाओ, दो गोली से तीसरी गोली खाई तो बस चिर निद्रा में चले गए। चिर निद्रा जानती है? चिर निद्रा नहीं भावी दिन जाए, नहीं भावी मरण निकट आए, कभी भी नहीं सोचते हैं कि अभी कल मरना है कि परसों मरना है कि 100 वर्ष के बाद में मरना है, कभी नहीं सोचते हैं इसके। ये काम हम कर लेना, नौकरी यदि हमारी हो जाए हमारा सब, अभी मिल रहा है 5,000 का, तो ये 5,000 नहीं हमारा 10,000 वाला यदि मिल जाए, और थोड़ी देर के बाद में सीनियरिटी में मैं आ जाऊंगी और ये हो जाएगा, तब तो मैं खूब सुखी हो जाऊंगा। इतने में दूसरी कोई विपत्ति आ गई, कब मरण निकट है ये पता नहीं चलता, ये कब मृत्यु आ जाए। 25-25 वर्ष के नौजुवक और लड़की अभी शादी करके लौट रहे हैं आगरा से दिल्ली, और एक्सीडेंट हो गया, पूरा कार ही एकदम समाप्त हो गई, स्वप्न हो स्वप्न ही रहा, भालमंद खाई हेरी परिचिंता ही, अच्छा या बुरा खाते हैं, क्या खाते हैं, इसे पेट नहीं भरता है, चावल से रोटी से गोश्त और क्या क्या ये सब खाते हैं, शराब पीते हैं, दूध नहीं चाहिए शराब पी, दूध नहीं चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए, कोको कोला चाहिए, वो कोको कोला नहीं लेंगे, वो दूध नहीं पिए, आप 1,000 चेष्टा करें, मैं ठाकुर जी का प्रसाद पेड़ा देता हूँ बच्चों को, वो कहते हैं क्या,
टॉफी,
तो मैं कुछ टॉफी मंगा दिया उन बच्चों को, और जिसका कल्याण करना है उसको तो पेड़ा दे दिया, यदि पेड़ा नहीं लिया तो अच्छा जाओ दूसरे दिन आएगा टॉफी दे, तो खाई बालमंद खाई हेरी, और दूसरे की केवल बुराई सोचते हैं, भलाई नहीं सोचते, अपना स्वार्थ समझते। आजकल गुरु भी शिष्य की भलाई नहीं चाह करके उससे अपना दूध दुहाना चाहता है, दूध दुहाना चाहते समझते हैं, अपना स्वार्थ दुहन करना चाहते हैं, तो फिर जगत कहाँ रहा है। हम लोग ये सोचते नहीं कि ये शरीर को छोड़ना है, कभी ये संसार को छोड़ देना है तो सोचती है तो कभी छोड़ना, अभी समय नहीं है, अभी तो बच्ची है, कभी नहीं सोचते हैं, किंतु ये ट्रूथ है।